ये रेडियो नेपाल है। अब रमिता यादव से सुनिए हिंदी में समाचार। आरंभ में मुख्य समाचार। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चैत 27 को संघीय संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ की सामूहिक चर्चा। यातायात व्यवस्था विभाग ने सार्वजनिक यातायात का बढ़ाया किराया और कुवैत और यूएई में ईरान का मिसाइल हमला। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल ने चैत 27 गते के दिन संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक आह्वान की है। नेपाल सरकार मंत्रिपरिषद की सिफारिश पर संविधान की धारा 95 के अनुसार राष्ट्रपति पौडेल ने बैठक बुलाने का निर्णय किया है। राष्ट्रपति कार्यालय के सचिव महादेव पंत द्वारा जारी पत्र के अनुसार चैत 27 गते शुक्रवार को दोपहर 4 बजे संघीय संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक होगी। इस बैठक को राष्ट्रपति पौडेल संबोधित करने का कार्यक्रम है। संघीय संसद सचिवालय को भेजे गए पत्र में इस बैठक के लिए सभी सदस्यों की उपस्थिति का आह्वान किया गया है। संविधान की धारा 95 में यह व्यवस्था है कि राष्ट्रपति संघीय संसद के किसी एक सदन या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित कर सकते हैं और इसके लिए सदस्यों की उपस्थिति भी बुला सकते हैं। प्रतिनिधि सभा की आज की बैठक में वैकल्पिक विकास वित्त परिचालन विधेयक 2082 प्रस्तुत किया गया है। बैठक में अर्थमंत्री डॉ स्वर्णिम वागले ने विधेयक प्रस्तुत करते हुए कहा कि देश के समग्र आर्थिक विकास के लिए आवश्यक संसाधनों की व्यवस्था करने तथा दीर्घकालीन और टिकाऊ आधारभूत संरचना सहित विभिन्न क्षेत्रों के विकास और वैकल्पिक विकास के लिए वित्त से संबंधित कानून आवश्यक है। अर्थमंत्री डॉ वागले ने बताया कि विकास परियोजना की पहचान, प्राथमिकता निर्धारण, दीर्घकालीन निवेश सुनिश्चित करने और निजी क्षेत्र को सार्वजनिक पूर्वाधार विकास में आकर्षित कर नए वित्तीय स्रोतों के परिचालन के लिए ये विधेयक आवश्यक है। आज की बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से कृषि तथा पशुपक्षी विकास और वन तथा पर्यावरण मंत्री गीता चौधरी ने राष्ट्रीय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त व्यवस्थापन आयोग का 7वां वार्षिक प्रतिवेदन 2082 प्रस्तुत किया। आज की बैठक में सभामुख डोल प्रसाद अर्याल ने प्रतिनिधि सभा के उपसभामुख पद के निर्वाचन के लिए चैत 27 गते निर्धारित करते हुए संबंधित निर्वाचन कार्यक्रम की सूचना प्रकाशित करने का निर्देश किया। बैठक के दौरान सांसदों ने देश के समसामयिक विषयों पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। बैठक के आकस्मिक समय में बोलते हुए सांसद समीना मियां ने जलेश्वर बर्दीवासर खंड में एसईई परीक्षा देकर लौट रहे छात्रों की दुर्घटना में मृत्यु पर दुख व्यक्त करते हुए घायलों के लिए उचित राहत, जोखिमपूर्ण सड़क के पुनर्निर्माण, यातायात नियम उल्लंघन पर कड़ी कार्रवाई और जनचेतना कार्यक्रम चलाने की मांग की। प्रतिनिधि सभा की अगली बैठक चैत 27 गते शुक्रवार को दोपहर 4 बजे के लिए बुलाई गई है। राष्ट्रीय सभा की आज की बैठक में अख्तियार दुरुपयोग अनुसंधान आयोग का वार्षिक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया। बैठक में प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह की ओर से संघीय मामला तथा सामान्य प्रशासन, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मंत्री प्रतिभा रावल ने आर्थिक वर्ष 2081-82 का वार्षिक प्रतिवेदन पेश किया। इससे पहले बैठक में सांसदों ने महत्वपूर्ण राष्ट्रीय और राजनीतिक मुद्दों पर विपक्ष के साथ सहयोग की संस्कृति विकसित करने की आवश्यकता पर जोर देते हुए सकारात्मक नीतियों की निरंतरता बनाए रखने की बात कही। सांसदों ने एआई के उपयोग से बढ़ते साइबर बुलिंग और डिजिटल हिंसा के कारण महिलाओं और किशोरियों पर पड़ रहे मानसिक, शारीरिक और सामाजिक प्रभाव को रोकने के लिए साइबर सुरक्षा को प्रभावी बनाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। बैठक में सांसदों ने युद्ध की स्थिति के कारण खाड़ी देशों में रह रहे नेपाली नागरिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा उन्हें सुरक्षित रूप से स्वदेश वापस लाने के लिए कूटनीतिक पहल करने की मांग की। शून्यकाल में बोलते हुए सांसदों ने किसान हितैषी नीतियों के निर्माण, भ्रष्टाचार और महंगाई नियंत्रण, आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा कर्णाली प्रदेश के विकास पर विशेष ध्यान देने सहित विभिन्न समसामयिक विषय पर सरकार का ध्यानाकर्षण कराया। राष्ट्रीय सभा की अगली बैठक चैत 27 गते शुक्रवार को दोपहर 4:15 बजे के लिए बुलाई गई है। सरकार ने आज से लागू होने वाले सार्वजनिक यातायात के किराए में वृद्धि की है। यातायात व्यवस्था विभाग के अनुसार ईंधन की कीमत में 5 रूपये की वृद्धि या कमी होने पर किराया समायोजन करने की व्यवस्था के तहत ये निर्णय किया गया है। अब यात्री वाहनों का किराया 16.71% बढ़ा दिया गया है। इसी प्रकार पहाड़ी क्षेत्रों में चलने वाले मालवाहक वाहनों का किराया 21.68% बढ़ाया गया है, जबकि तराई क्षेत्रों में चलने वाले मालवाहक वाहनों का किराया 15.75% बढ़ा है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ये नया किराया दर इलेक्ट्रॉनिक वाहनों पर लागू नहीं होगा। विभाग के अनुसार इससे पहले 22 पूस 2081 को किराया समायोजन किया गया था और अब फिर से किराया बढ़ाया गया है। आप रेडियो नेपाल से हिंदी समाचार सुन रहे हैं। बस थोड़ी देर विज्ञापन।
ए छोरा, के छ हाल खबर? पढाई कस्तो चल्दैछ?
सबै राम्रै चल्दैछ। अनि त्यहाँ के छ बुवा?
यहाँ पनि सबै राम्रो छ। ल, तेरो आमासँग कुरा गर।
पर्दैन पर्दैन, किन धेरै पैसा खर्च गर्नुहुन्छ?
किन टेन्सन लिन्छस् बाबु? हामी जस्ताको लागि एनटीसी को कल इन्डिया प्याक छँदैछ नि। इन्डिया कल गर्न त कस्तो सस्तो पो छ त त्यसमा।
ल त्यसो भए ढुक्कले कुरा गरौँ न त।
सेवा सुचारु गर्नका लागि *14# डायल गर्नुहोस्।
नेपाल टेलिकम, राष्ट्रको संचार।
अब बाकी समाचार। कैलाली के गेटा स्थित शहीद दशरथ चंद स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय में आगामी शैक्षिक सत्र से एमबीबीएस सहित 4 विषयों में पढ़ाई शुरू होने जा रही है। विश्वविद्यालय की चौथी सभा बैठक के बाद आयोजित पत्रकार सम्मेलन में स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय के उपकुलपति डॉ सुनील कुमार जोशी ने बताया कि पहले चरण में एमबीबीएस, बीएससी नर्सिंग, एमएलटी और ऑप्टोमेट्री की कक्षाएं संचालित की जाएगी। उन्होंने बताया कि इसके लिए आवश्यक तैयारी चल रही है और एमबीबीएस में 50, नर्सिंग में 30, एमएलटी में 20 तथा ऑप्टोमेट्री में 20 छात्रों को प्रवेश देने की योजना है। उपकुलपति जोशी ने जानकारी दी कि वर्तमान में गेटा में संचालित 100 सैया वाले अस्पताल में 300 सैया के अस्पताल में उन्नत किया जाएगा। उन्होंने कहा कि गेटा अस्पताल को शिक्षण अस्पताल के रूप में विकसित करने का सरकारी लक्ष्य है। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में स्थित विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ सामूहिक चर्चा की है। इस चर्चा में परराष्ट्र मंत्री शिशिर खनाल भी उपस्थित थे। बैठक में प्रधानमंत्री शाह ने देश की वर्तमान राजनीतिक स्थिति और सरकार की प्राथमिकताओं के बारे में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को जानकारी दी। परराष्ट्र मंत्रालय के अनुसार सरकार की आगामी कार्य दिशा और प्राथमिकताओं से अवगत कराने के उद्देश्य से ये बैठक आयोजित की गई थी। चर्चा के दौरान उपस्थित राजदूतों ने नई सरकार की कार्ययोजना और प्राथमिकताओं के बारे में रुचि व्यक्त की। इस अवसर पर प्रधानमंत्री शाह ने सुशासन, आर्थिक विकास और वैदेशिक संबंधों को संतुलित रूप से आगे बढ़ाने की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने नेपाल के विकास प्रयासों में अंतर्राष्ट्रीय समुदाय के सहयोग और सद्भाव के निरंतर बने रहने का विश्वास भी जताया। शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मंत्रालय ने अवैध रूप से वसूले गए शुल्क विद्यार्थियों को वापस करने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने आज एक विज्ञप्ति जारी करते हुए कहा कि देश के कुछ निजी विद्यालय अब भी कानून के विपरीत शुल्क ले रहे हैं, जिसकी शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस कारण मंत्रालय ने सभी संबंधित पक्षों को अवैध रूप से लिए गए शुल्क लौटाने का निर्देश किया है। मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया है कि यदि कोई विद्यालय इस निर्देश का पालन नहीं करता है तो प्रचलित कानूनों और संबंधित आयन के प्रावधानों के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए गृह मंत्रालय, संबंधित जिला प्रशासन कार्यालय और स्थानीय तय के साथ आवश्यक समन्वय करने का अनुरोध किया गया है। साथ ही विद्यार्थियों के शुल्क संबंधी शिकायतों की रिपोर्टिंग और समाधान के लिए शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केंद्र में एक सहायता कक्ष स्थापित किया गया है। अब अंतर्राष्ट्रीय समाचार। ईरान के सरकारी टेलीविजन के अनुसार लवाना द्वीप स्थित उनके तेल ढांचे पर हुए हवाई हमले के बाद ईरान ने कुवैत और संयुक्त अरब अमीरात पर मिसाइल और ड्रोन हमले किए हैं। सरकारी प्रसारण माध्यम के अनुसार लवाना द्वीप के तेल ढांचे पर हमले के कुछ घंटों बाद कुवैत और यूएई की ओर मिसाइल और ड्रोन दागे गए हैं। ईरानी राष्ट्रीय तेल परिशोधन और वितरण कंपनी के अनुसार मंगलवार रात संघर्ष विराम की घोषणा होने के बावजूद बुधवार सुबह करीब 10 बजे लवाना द्वीप के तेल रिफाइनरी पर हमला किया गया। कंपनी ने इस हमले की कड़ी निंदा करते हुए कायरतापूर्ण बताया है। फिलहाल आग पर काबू पाने के लिए सुरक्षा और दमकल टीम सक्रिय रूप से काम कर रही है और ढांचे को सुरक्षित बनाने का प्रयास जारी है। कर्मचारियों को समय रहते सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है, जिससे किसी भी तरह की जनहानि नहीं हुई। लावाना द्वीप स्थित ये तेल रिफाइनरी पास के तेल क्षेत्र से निकाले गए कच्चे तेल को प्रोसेस करने का एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां से ईरान उच्च गुणवत्ता का तेल निर्यात करता है। अब मौसम। अगले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 25 से 27 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10 से 12 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहने की संभावना है। पिछले 24 घंटों में काठमांडू घाटी का अधिकतम तापमान 19.5 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 10.4 डिग्री सेल्सियस रहा। अंत में इस बुलेटिन के मुख्य समाचार एक बार फिर। राष्ट्रपति रामचंद्र पौडेल चैत 27 को संघीय संसद की संयुक्त बैठक को करेंगे संबोधित। प्रधानमंत्री बालेंद्र शाह ने नेपाल में विभिन्न देशों के राजदूतों के साथ की सामूहिक चर्चा। यातायात व्यवस्था विभाग ने सार्वजनिक यातायात का बढ़ाया किराया और कुवैत और यूएई में ईरान का मिसाइल हमला। रेडियो नेपाल से प्रसारित रात 10 बजे के हिन्दी समाचार समाप्त हुए। रात 11 बजे आप सुनेंगे नेपाली में समाचार। नमस्कार, शुभरात्रि।